लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, दुनिया भर में कोविड-19 के अब तक 11 करोड़ 24 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 24 लाख 95 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। यह लगातार छठवां हफ्ता है जब दुनिया भर में संक्रमणों के मामलों में कमी दर्ज की गई है। विश्व के अनेक देशों ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपात इस्तेमाल सूची में शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है। UN एजेंसी के महानिदेशक जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि वैक्सीनों के त्वरित वितरण को संभव बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अभी उत्पादन के स्तर बढ़ाने की जरूरत है। त्वरित वितरण को प्राथमिकता देने के इरादे से अग्रणी विमान कंपनियों के साथ समझौते किए हैं और इन विमानों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के प्रयासों के तहत युद्ध से तबाह देश अफगानिस्तान ने मंगलवार को अपना कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। एस्ट्राजेनिका के टीके की 5 लाख खुराक की पहली खेप इस महीने की शुरुआत में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से मिली, जो मध्य और निम्न आय वाले देशों के लिए वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। बुधवार 24 फरवरी को कोरोना वायरस वैक्सीन की 6 लाख खुराकों की खेप घाना पहुंच गई है और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली कोवैक्स पहल के तहत ये टीके भारत से भेजे गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए वैक्सीनों के न्यायसंगत वितरण की आवश्यकता को दोहराया।
वैक्सीन इक्विटी इज नॉट जस्ट द राइट थिंग टू डू, इट्स आल्सो द स्मार्ट थिंग टू डू। द लॉन्गर इट टेक्स टू सप्रेस द वायरस एवरीवेयर।
वैक्सीनों का न्यायोचित वितरण सही होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। दुनिया में हर जगह वायरस पर काबू पाने में जितना समय लगेगा, उससे वायरस को अपना रूप बदलने और वैक्सीनों को बेअसर करने का समय मिल जाएगा। UN एजेंसी प्रमुख ने आगाह किया है कि फिलहाल पहले से कहीं ज्यादा संख्या में वैक्सीनों का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन सीमित संख्या में उपलब्ध होने की वजह से उन्हें असरदार ढंग से इस्तेमाल में लाया जाना होगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कोविड-19 पर जवाबी कार्रवाई के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत जरूरी दवाओं, मेडिकल उपकरणों और त्वरित वैक्सीन वितरण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 10 से ज्यादा अग्रणी विमान कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विमान कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में मेडिकल सामग्री पहुंचाने में मदद करेंगी। दवाओं, वैक्सीनों और उपकरणों की जीवन रक्षक आपूर्ति को प्राथमिकता दिए जाने के अलावा विमान कंपनियां तापमान नियंत्रण और सुरक्षा उपायों का भी ख्याल रखेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपात इस्तेमाल सूची में शामिल किए जाने को मंजूरी दे दी है। इन वैक्सीनों को कोरिया गणराज्य में SK बायो कंपनी और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। दोनों कंपनियां एक ही वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन अलग अलग उत्पादन संयंत्रों में निर्मित होने की वजह से दोनों वैक्सीनों की समीक्षा की गई और उसके बाद ही उन्हें मंजूरी मिली है।
ब्रिटेन के वर्के फाउंडेशन और यूनेस्को ने हाल ही में भारत में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक छोटे से गांव परितेवाड़ी के एक सरकारी स्कूल अध्यापक रंजीत सिंह डिसले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार के लिए 140 देशों से 12,000 शिक्षकों के नामांकन किए गए थे। यह सम्मान उन अध्यापकों को दिया जाता है जो शिक्षा प्रदान करने के दायित्व को पूरा करते हुए सामान्य चलन से आगे बढ़कर कुछ अलग कर दिखाते हैं। रंजीत सिंह डिसले को शिक्षा से परे जाकर समाज में बदलाव लाने की उनकी कोशिशों के लिए पुरस्कार मिला है। रंजीत ने परिवर्तन लाने की नई भाषा सीखी, छात्रों को शिक्षा में मदद करने के लिए डिजिटल तकनीक इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढा और खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। जैसा कि रंजीत सिंह कहते हैं, इस दुनिया को 21वीं सदी के अध्यापकों की जरूरत है, क्योंकि 21वीं सदी के छात्रों को 20वीं सदी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो भी 19वीं सदी के पाठ्यक्रम को 18वीं सदी के तकनीकों के इस्तेमाल करके। भविष्य टेक्नोलॉजी के हाथ में है, अतः अध्यापकों को शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने होंगे, तभी हम 21वीं सदी के शिक्षक बन सकते हैं। आइए सुनते हैं यूएन रेडियो की संवाददाता अंजू शर्मा द्वारा रंजीत सिंह के साथ हुए साक्षात्कार को।
शिक्षक के रूप में आपका सफर कैसे शुरू हुआ और आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? अपनी कहानी बताइए हमें।
आपको अगर सच में बताऊं तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं एक टीचर बन जाऊंगा। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं एक आईटी इंजीनियर बन जाऊं, मगर कुछ दुर्भाग्यवश वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिताजी जो हैं वो उन्होंने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल करने के लिए एडवाइस किया, सलाह दी थी।
किस तरह की चुनौतियां सामने आई और क्या कभी ऐसे क्षण आए जब सब कुछ छोड़ देने का मन किया हो?
सबसे बड़ी चुनौतियां थी पेरेंट्स का शिक्षा के प्रति उनका कोई भी मतलब उसको मालूम ही नहीं था कि क्या चेंजेस वो ला सकते हैं। सेकंड था अटेंडेंस बच्चों, क्योंकि क्लासरूम का स्टेटस देख के सिनारियो देख के कोई भी वहां पे पढ़ने का मन नहीं करेगा। और तीसरा था स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे उनको एनुअल टेस्ट होते थे, उनका इवैल्यूएशन होता था, तो उस दौरान भी बच्चों का परफॉर्मेंस काफी लो था।
मोस्ट एक्सेप्शनल एजुकेटर, कौन से काम है जिनको लेकर आपको ये सम्मान मिला है और किस तरह से उस उन कार्यों के जरिए आपने उस इलाके में बदलाव लाए हैं?
तो जैसे मैं 2009 में वहां पे गया था, तो जहाँ पे जिस दिन मैंने देखा था कि लड़कियों की शिक्षा काफी अहमियत दी नहीं जाती थी, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये लड़कियों की शिक्षा के लिए पेरेंट्स में कम्युनिटी में कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो मैं बाहर के गांव की, दूसरे गांव की या सिटीज की लड़कियां जो शिक्षित होके कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई पुलिस हैं, तो उनको मेरे स्कूल में इन्वाइट करता था और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम रखता था और वो लड़कियां अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती थी और पेरेंट्स को मैं बताता रहा अगर ये लड़की कर सकती हैं तो आपकी क्यों नहीं कर सकती। लड़कियों का और बच्चों का अटेंडेंस स्कूल में ज्यादा बढ़ाने के लिए आई थॉट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो मैंने एक लैपटॉप खरीदा उस वक्त और वो लैपटॉप लेके मैं स्कूल में जाता था। हम लैपटॉप पे मूवीज देखते थे, गाने देखते थे, डांस करते रहते थे, वो धीरे धीरे अटेंडेंस बढ़ती रही। अब जब बच्चे और लड़कियां स्कूल में आने लगी तो अब मुझे वो एंटरटेनमेंट की जगह एजुटेनमेंट में बदलनी थी और उसी को ध्यान में रखते हैं मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए स्कूल के लेसन के ऊपर, मेरे खुद के वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए और बाकी कुछ यूट्यूब से लाए, उसमें मैंने खुद का वॉइस ओवर दिया और ऐसा डिजिटल कंटेंट मैं बच्चों के साथ शेयर करता रहा। तो जब एक दिन मैं एक दुकान में गया तो जहां पे मैंने देखा कि उस शॉपकीपर ने, दुकानदार ने प्रोडक्ट के ऊपर का एक कोड स्कैन किया और जैसे उसका प्राइस और डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर आया तो वही क्षण मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या ये हम शिक्षा में भी कर सकते हैं क्या। तो असल में जो मैंने डिजिटल कंटेंट बनाया था वो अब मैंने उस QR कोड में एम्बेड किया और वो फिर ये 27 QR कोड जो है ना QR कोड ये मैंने स्टिकर पेजेस पे प्रिंट किए और वो बच्चों के पेजेस टेक्स्ट बुक के हर एक पेज के ऊपर वो चिपका है। अब बच्चों को सिर्फ उसको स्कैन करना था और कंटिन्यू करना था एजुकेशन। अब बच्चे घर बैठे भी अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर सकते थे। भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी के हाथ में है, तो टीचर्स ने भविष्य को देखते हुए टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में शिक्षा में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने होंगे और खुद को उसके लिए एक सक्षम टीचर बनाना होगा, तभी हम जाके 21वें सदी के टीचर्स बन सकते हैं।
और इसी के साथ हम UN रेडियो से लिए गए सामयिक लोकोपकारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में परम धर्म पीठीय रोमी कार्यालय के धर्माधिकारियों की 40वीं आध्यात्मिक साधना के दौरान शुक्रवार को प्रस्तुत चिंतन में कार्डिनल कांतला मेस्सा ने शुद्धि, प्रकाश और ईश्वर के साथ सहमिलन पर बल दिया। सुसमाचार के पश्चाताप करो और विश्वास करो वाक्य पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा कि मन की शुद्धि के लिए पश्चाताप की नितांत आवश्यकता होती है। कार्डिनल महोदय ने कहा कि हालांकि पश्चाताप करना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अपनी कुछ आदतों को छोड़ना होता है, अपने आप को बदलने का संकल्प करना होता है, तथापि 40वें काल के दौरान इसका प्रयास करना हमारा दायित्व है, ताकि हम मन से शुद्ध होकर ईश्वरीय आलोक का आनंद उठा सकें। कार्डिनल कांतला मेस्सा ने कहा कि प्रभु येसु के वचनों पर ध्यान कर हम बच्चों के सदृश बने तथा अपनी खामियों को दूर करने से न डरें, बल्कि अपने दुर्गुणों को पहचान कर उन पर पश्चाताप करें तथा ईश कृपा के पात्र बने। उन्होंने कहा, बपतिस्मा संस्कार प्राप्त करने के कारण हम ख्रिस्तीय उस आध्यात्मिकता के उत्तराधिकारी हैं जो सामान्यतः पूर्णता को 3 चरणों में विभाजित करती है, जो हैं शुद्धि, प्रकाश और ईश्वर के संग सहमिलन। ये 3 चरण ईश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें त्याग और वैराग्य का वरण करना होगा, तब ही हम ख्रिस्तीय धर्म के मर्म को समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चाताप, मन परिवर्तन और ईश्वर के साथ मिलन महान प्रज्ञा और सदियों के अंतराल में किए गए ख्रिस्तीय धर्म के महानुभवों द्वारा की गई अनुभूतियों का फल है। इसलिए यह सोचना कि आज के युग में यह आउटडेटेड या दकियानुसी ख्याल मात्र है, गलत होगा। उन्होंने कहा, यह न तो दक्यानुसी है, न ही अनाधुनिक है और न ही पुरानी सोच पर आधारित है, बल्कि ईश कृपा के फलों को ग्रहण करने का एकमात्र तरीका है। यूरोप के कैथोलिक धर्माधीक्षों ने पोलैंड के गर्भपात कानून पर यूरोपीय संसद के प्रस्ताव का खंडन किया है। 25 फरवरी को जारी एक पत्र में कैथोलिक धर्माधीक्षों ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को पारित प्रस्ताव का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पोलैंड की शीर्ष अदालत के उस फैसले के बाद कि भ्रूण की असामान्यताओं के लिए गर्भपात की अनुमति देने वाला 1993 का कानून असंवैधानिक था, यूरोपीय संसद निकाय ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। 22 अक्टूबर 2020 के संवैधानिक न्यायाधिकरण के फैसले से पहले पोलिश कानून केवल बलात्कार या मां के जीवन के लिए जोखिम या फिर भ्रूण असामान्यता के मामलों में गर्भपात की अनुमति प्रदान करता था। यूरोपीय संसद अध्यक्ष दाविद ससौली को प्रेषित तथा यूरोपीय कैथोलिक धर्माधीक्षों के सम्मेलन की कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 22 फरवरी के पत्र में धर्माधीक्षों ने कहा, कानूनी दृष्टिकोण से हम यह रेखांकित करना चाहते हैं कि न तो यूरोपीय संघीय कानून और न ही मानवाधिकार संबंधी यूरोपीय सम्मेलन गर्भपात का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। यह मामला सदस्य राज्यों की कानूनी प्रणालियों पर निर्भर होता है। पोलैंड के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष स्तानिस्लाव गादेस्की द्वारा उक्त प्रस्ताव की आलोचना के बाद यूरोप के कैथोलिक धर्माधीक्षों ने यूरोपीय संसद अध्यक्ष को पत्र भेजा था। धर्माधीक्ष गादेस्की ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जीवन के अधिकार पर किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। लखनऊ के कैथोलिक धर्माध्यक्ष जेरल्ड जॉन मथायस ने राज्य में पारित नवीन धर्मांतरण विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हुए कहा कि राज्य में पहले ही से बलात् धर्मांतरण के लिए विधेयक था, इसलिए इस नए कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी को विरोध प्रदर्शनों के बीच बल और कपटपूर्ण तरीकों से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून पारित किया गया। नवीन विधेयक में उल्लंघनकर्ताओं को 10 साल तक कारावास और 50,000 रुपए के अधिकतम जुर्माने का प्रावधान है। धर्माध्यक्ष मथायस ने उका समाचार से कहा, नए विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही से धर्मांतरण की जांच के लिए एक बिल था, लेकिन यह चिंता का विषय है क्योंकि बलात् धर्मांतरण के नाम पर बहुसंख्यक समूहों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ। उन्होंने कहा, कैथोलिक कलीसिया देश में धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देती है, वह न तो धर्मांतरण का प्रचार करती है और न ही बलात् धर्म परिवर्तन में विश्वास करती है, और जहां तक मेरे राज्य में कलीसिया का सवाल है, वहां किसी भी व्यक्ति के धर्मांतरण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। धर्माध्यक्ष मथायस ने कहा, कैथोलिक कलीसिया बहुत सी लोकोपकारी योजनाओं में संलग्न है, इसलिए हमारी मुख्य चिंता यह है कि हमारे उदारतापूर्ण कार्यों का गलत अर्थ लगाया जा सकता है या फिर कहा जा सकता है कि इसका उद्देश्य धर्मांतरण था। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान इस बात की गारंटी देता है कि हम अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करें, और इस विधेयक को लाना किसी के विश्वास की जांच करना है जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक कैथोलिक धर्म बहन पर एक हिंदू शिक्षक के धर्मांतरण का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की है कि धर्म बहन ने राज्य के कड़े धर्म परिवर्तन कानून का उल्लंघन किया है। स्थानीय कलीसियाई अधिकारियों के अनुसार खजुराहो के सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट की प्रधान आचार्य सिस्टर भाग्या पर 22 फरवरी को पुलिस ने यह आरोप दर्ज किया। सतना धर्म प्रांत के जनसंपर्क अधिकारी फादर पॉल वर्गीज ने कहा, यह आरोप सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि यह मामला राज्य की हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार द्वारा जनवरी में एक नया धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के बाद ईसाइयों के खिलाफ दायर किए गए ऐसे मामलों की श्रृंखला में नवीनतम था। फादर वर्गीज ने बताया कि मामला हिंदू महिला रूबी सिंह की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने 2016 में सेक्रेट हार्ट स्कूल ज्वाइन किया था। छात्रों और अभिभावकों द्वारा टीचर रूबी सिंह की शिकायतें मिलने के उपरांत स्कूल प्रबंधन ने विगत वर्ष कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उसकी सेवाओं को स्थगित कर दिया था। सिंह ने उल्टे धर्म बहन भाग्या पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने उसके समक्ष ख्रिस्तीय धर्म में परिवर्तित होने की शर्त रखी थी। फादर वर्गीज ने कहा, सिस्टर भाग्या निर्दोष हैं तथा नए धर्मांतरण कानून की खामियों का लाभ उठाकर उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। फादर वर्गीज ने बताया कि रूबी सिंह ने स्कूल और कॉन्वेंट के प्रांगण में विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद 17 फरवरी को स्कूल प्रबंधन ने उसके विरुद्ध पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, किंतु इसके बाद उसने धर्मांतरण का झूठा आरोप पेश कर दिया। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।